बलसागर भारत हो विश्वात शुभ निराहु, अर्थात ये भारत बल का सागर हो जाए, विश्व में शोभायमान हो जाए। हे कण कण करी बांधियले, जन सेवे जीवन दिदले, हतियाला बांधा है, जीवन अर्पण किया है, राष्ट्रार्थ प्राण है उरले, मी सिद्ध मराया लाहो। वैभवी देश चढ़वीन, इस देश को वैभव के शिखर पर चढ़ाऊंगा। सर्वस्व त्यास अर्पीन, अपना सर्वस्व उसको अर्पण करूंगा। हा तिमीर घोर संहारीन, ये जो अंधकार है, ये जो तिमिर है, यह तारीकी, इसका संहार करूंगा। या बंधु साहे अलाहो, हाथ हाथ घेऊन हृदयास हृदय जोड़ून, हाथ में हाथ लेकर हृदय से हृदय जोड़कर ऐक्यासा मंत्र जपून या कार्य कराया ला हो। करी दिव्य पताका घेऊ, करी दिव्य पताका घेऊ, प्रिय भारत गीते गाऊ, विश्वास पराक्रम दाऊ, ही माय निज पदा ला हो। या उठा करू हो शर्थ, संपादु दिव्य पुरुषार्थ, हे जीवन ना तरी व्यर्थ, भाग्य सूर्य तड़पत राहो। हिमाय मुक्त होई न वैभवे, वैभव दिव्य शोभेल, जगतास शांति देईल, तो सोन्याचा दिन येवो। ऐसा सोने का सुनहरा दिन आना चाहिए। ये कविता बहुत प्रसिद्ध कविता है, नेशनल टीचर ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है, ऐसे महाराष्ट्र के एक कवि सोशल एक्टिविस्ट ने यह लिखी हुई है। इसको हम क्यों सुना रहे हैं? हम जब बहुत छोटे थे तब ये कविता सुनी थी और इस कविता के कुछ कुछ वाक्य, कुछ कुछ शब्द इतने गहरे उतर गए थे कि ये कविता तो पूरी अब पता है, तब कुछ एक दो ही वाक्य पता थे, जैसे कि मी सिद्ध मरायाला हो, मेरा जो जीवन है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, वो सफल होना चाहिए। हाथ तिमिर घोर संहारीन, वैभवी देश सड़वीन, इस देश को वैभव पर चढ़ाऊंगा। या उठा करू हो शर्थ, संपादु दिव्य पुरुषार्थ, दिव्य पुरुषार्थ करूंगा। जीवन जन सेवे दिधले, ये संपूर्ण जीवन जन सेवे सेवा के लिए अर्पित करूंगा। ऐसे कुछ भाव इसमें है। तो हमको याद है जब ये सुना था तो ये दो तीन जो वाक्य है बीच बीच के, पूरा तो तब पता नहीं था, परंतु ये जो दो तीन वाक्य थे ये बहुत लंबा समय तक चले और इन्हीं ने आगे चलकर जो जीवन संसार की ओर जा रहा था उसको मोड़कर अध्यात्म की ओर लाया। मी सिद्ध मराया लाहो, ये अब तक हमको याद है, और सर्वस्व त्यास अर्पीन, इस देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करूंगा। तो भारत को क्या बनाना है? संडे की अव्यक्त मुरली, क्या करना है भारत के साथ? क्या करना है? भारत कैसा बन जाए? सारे विश्व को क्या बताना है? सारे विश्व के नेताओं को क्या बताना है? भारत क्या बन जाए? लाइट हाउस बन जाए, विश्वात शोभनी राहो, सारे विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ, एक दीप स्तंभ बन जाए, सारे विश्व की आत्माएं क्या जान ले भारत कैसा है? अविनाशी है। भारत कैसा है? प्राचीन है। भारत कैसा है? सर्वश्रेष्ठ है। भारत कैसा है? संपन्न है। भारत संपन्न है, भारत अविनाशी है, भारत सर्वश्रेष्ठ है, भारत ही प्राचीन भूमि है, भारत से ही सारे विश्व में आध्यात्मिक प्रकाश जाएगा। ये किसको बता दो? ये खुशखबरी राजनेताओं को बता दो। कौन से राजनेता? जो युवाओं से डरे हुए, भारत के राजनेता और सारे विश्व के राजनेता, उनको कौन सी खुशखबरी दो? जो तुम सोचते हो, जो तुम्हारा स्वप्न है कि ऐसा होना चाहिए, उनकी चाहना तुम पूर्ण करने वाले हो, ऐसा सिद्ध करो। ऐसा हम सिद्ध करके दिखाएंगे। और कहने वाले तो बहुत है, परंतु सुनाने वालों की वजह से क्या हो गया है विश्वास का? जो कहते हैं कि हम पर विश्वास करो, हम जो सुनाते हैं, सुन सुन के विश्वास ही निकल गया है, क्योंकि कहने वाले बहुत है। क्या कहने वाले? कि हम भारत को, नारा लगाने वाले कि हम भारत को सुखमय संसार बनाएंगे, ऐसा कहने वाले बहुत है। भारत को स्वर्ग बनाएंगे, राम राज्य फिर लाएंगे, ऐसा कहने वाले बहुत है। परंतु उनसे भी धोखा है, उनसे भी धोखा महसूस हो रहा है। तो ऐसा भारत का चारित्रिक पतन हुआ है, ऐसा विश्व का चारित्रिक पतन हुआ है, जिसके लिए बाबा ने क्या कहा, डबल डबल गरीबी है और डबल महंगाई है। एक तो वो गरीबी है और दूसरी चरित्र की गरीबी, दुख अशांति की गरीबी है, स्पिरिचुअल पावर्टी, पावर्टी ऑफ कैरेक्टर, चारित्रिक पतन हो रहा है। क्यों हो रहा है चारित्रिक पतन और उसके निशानी? संसार में जो चारित्रिक पतन है उसकी निशानियां क्या है विठल भाई? चारित्रिक पतन की 10 निशानियां: भ्रष्टाचार, करप्शन, ग्राफ्ट और दुराचार, अनाचार, पापाचार, कुकर्म, विकर्म, भ्रूण हत्या और व्याभिचार और लिव इन रिलेशनशिप, व्याभिचार। और चारित्रिक पतन की निशानियां क्या क्या हो रहा है संसार में? बाबा ने कहा है महंगा हो गया है चरित्र, मिल नहीं रहा है, कहीं पर है ही नहीं चरित्र। चरित्र का ऐसा पतन हुआ है। गीत में सुना, दिव्य पुरुषार्थ करेंगे, दिव्य वैभव पर भारत को चढ़ाएंगे। हाँ सोनिया सा दिन ये वो, हमको याद है जब हमने ये सुना था, ऐसा नशा चढ़ा था इतनी बहुत छोटे 5-6 साल कि भारत को ऐसा बनाना है। कितना समझ में आता है? समझ में कुछ नहीं पता, परंतु भारत को सर्वस्व त्यास हरपीन, गिरा हुआ है संसार, सर्वस्व त्यास अर्पीन, संपूर्ण उसके प्रति समर्पण करेंगे। और भारत के पतन की निशानी या विश्व के पतन की, चारित्रिक पतन की निशानी, फॉल ऑफ कैरेक्टर, राइज एंड फॉल ऑफ कैरेक्टर, और स्वार्थ वृत्ति बढ़ रही है, और सांप्रदायिकता, फैनेटिटिज्म, धार्मिकता, धर्मम के में संघर्ष, एक धर्म वाले, एक जाति वाले लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, रोड रेज, रोड रेज पता है ना, सबसे ज्यादा रोड रेज, सड़क पर होने वाले, ट्रैफिक है, लोग बीच में है, झगड़ा, इसको रोड रेज कहा जाता है। सबसे ज्यादा लड़ाई झगड़े इसकी वजह से होते हैं, ट्रैफिक की वजह से। और चारित्रिक पतन, लोभ वृत्ति बढ़ रही है, धन लोलुपता, और असुरक्षा की भावना, और असंतुष्टता, और हाँ बीमारी, वो जो आएगा महंगाई में आएगा। अब है दूसरा प्रश्न है महंगाई का, एक है गरीबी, एक है महंगाई, दो चीजों की चर्चा बाबा ने की है, डबल महंगाई और डबल गरीबी। एक तो स्थूल गरीबी, पहले गरीबी किस किस की, पहले महंगाई किस किस चीज की हो गई है संसार में? रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स, रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर इज ओनली फॉर द रिच, गरीबों को बीमार पड़ने का अधिकार नहीं है। अगर पड़ जाए तो इलाज नहीं करो, क्योंकि हेल्थ केयर बहुत 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 एक्सपेंसिव है। एक एक दिन का खर्चा बड़े अस्पताल में जाकर देख लो, एक एक दिन का खर्चा, मीटर ऐसे घूमता है कि पता ही नहीं चलता है, हर दिन बड़े बड़े अस्पतालों में हम देखते हैं कि पेशेंट के बेड के सामने वो जो रहती है बिलिंग काउंटर वाली, आईसीयू में एक लिस्ट चिपका के जाती है रोज, एक चिट पेपर, इतना पेंडिंग, इतना पेंडिंग, इतना पेंडिंग, 1 लाख 2 लाख हर दिन। हम लोग जब मुंबई में थे तो जो बड़े बड़े आईसीयू थे उसमें वो आती थी और सुबह चिपका के जाती थी और वहां पे ऐसे पेशेंट पड़े रहते थे, लंबा समय तक पड़े रहते थे एक एक मास के लिए। कोई वेंटिलेटर पे डायलिसिस चालू है, कुछ कुछ कर रहे, इतने सारे आइनोट्रोप्स, इतने सारे इंजेक्शन चालू है, रोज का बिल 25,000-30,000। तो हेल्थ केयर कॉस्टली है, फूड भोजन महंगाई, पहले क्या किलो बिकता था और अब क्या किलो बिक रहा है, पहले पानी इलेक्ट्रिसिटी और महंगाई, ऑर्नामेंट, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग कितना महंगा है, और एजुकेशन, सबसे बड़ी बात, अच्छी बात बोल दी, एजुकेशन, छोटे छोटे बच्चों की क्या फीस होती है हर महीने की फीस, डोनेशन और डोनेशन, ट्यूशन, स्कूल अलग, ट्यूशन अलग, ट्यूशन जाना ही पड़ता है नहीं तो सब फेल, जब ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फिर बुक्स, फिर लीगल डिपार्टमेंट, हाँ लीगल डिपार्टमेंट, एक एक कोर्ट और उसका पैसा, और क्या क्या महंगा हो गया है संसार में, साधन, डिजिटल साधन, और मैं जमीन, प्लॉट, जमीन, प्लॉट, हाँ मुंबई में इतनी, जहां जिस जितनी जमीन पर खड़े रहते हो उसकी कीमत 1 करोड़ है इतनी जमीन की तो बाबा ने कहा डबल महंगाई हो गई है। एक है ये सारी स्थूल महंगाई तो है ही है, दूसरी कौन सी, चरित्र की, चरित्र बहुत महंगा हो गया है, मिल नहीं रहा है, सब जगह पतन है चरित्रिक, चरित्र का, ऐसे चारित्रिक पतन की अवस्था संसार में सब हो रहा है, और इसी चरित्र की गरीबी है सारा। और उनको क्या याद दिलाना है कि भारत को हम, भारत फिर भरपूर होगा, हीरो से आकाश सजा हो और किससे जमीन भरी हो, मोतियों से जमीन भरी हो, ये आश्वासन दो कि भारत को हम, सिद्ध करके बताओ कि भारत को हम फिर समृद्ध बनाएंगे, फिर मालामाल बनाएंगे, फिर संपन्न बनाएंगे, ऐसा संपन्न बनाएंगे कि जहां सब प्राप्तियां होगी वहां पर कोई भी फिर समस्या नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, ऐसा सुखमय संसार बनाने वाले हम हैं, ये आश्वासन दो। और कैसे बनाएंगे, बोल के नहीं, अपने जीवन, आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले, पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे, ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाएंगे, ये सारी बातें बताई है। तो मुरली का सार है कि ये काम हम करेंगे, ऐसा सरकार को दिखाओ, विश्व को दिखाओ, नेता डरे हुए हैं, किन से, युवाओं से और नेताओं से कौन डरा हुआ है, नागरिक नेताओं से नागरिक डरे हैं। तो विधि क्या है, विधि कैसे होगा, ये सब विधि क्या बताई, मेन मुरली अभी है, ये तो जो करना है वो बताया, भारत को ऐसा बना दो, विश्व धर्म गुरु बनेगा भारत एक दिन, ये बनाने वाले तुम हो, ये तुम पर जिम्मेवारी है, करो दिव्य पुरुषार्थ, ये दिव्य पुरुषार्थ तुमको करना है। तो कैसे करेंगे, दृढ़ संकल्प से कैसे करेंगे, 14 विधि है। कैसे करेंगे? किसकी सभा देख रहे हैं बाप दादा? होली हंसों की सभा देख रहे हैं। होली हंस अर्थात हंस का क्यों इतना महत्व है? पहले हंस की चर्चा करते हैं और फिर होली हंस की। हंस एक तो किसका प्रतीक है? स्वच्छता का प्रतीक है। हंस पवित्रता का प्रतीक है। हंस सौंदर्य का प्रतीक है। हंस दाम्पत्य जीवन का प्रतीक है। कैसे? दाम्पत्य जीवन का प्रतीक कैसे है? दाम्पत्य जीवन क्योंकि हंस का एक ही साथी होता है, एक ही पार्टनर होता है, एक ही साथी के साथ सारा जीवन बिताता है। और अगर वो साथी मर गया तो फिर अकेला ही रहता है। नो रीमैरिज। पतिव्रता भी पत्नीव्रता भी है। ये हंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि वो एक ही के साथ रहता है। होगा वो भी, परंतु ये विशेष बताई जाती है। और हंस कहाँ रहते हैं? हंस की और एक विशेषता है एकता। वो संगठन में रहते हैं, मानसरोवर में, झील में, या फिर समुद्र तट पर रहते हैं। उसके बाद में हंस जो है वो नीरशीर अलग करता है। और हंस की विशेषता, हंस सरस्वती का वाहन है और वो बहुत ही जिसको कहते हैं विवेकी पक्षी है। दिव्यता का प्रतीक विवेकी पक्षी है, बहुत विवेक से काम करता है। तो ये सारी हंस की निशानी है। और हंस आसन किसको कहा बाबा ने? हंस की चाल। हंस आसन किसको कहा? मुरली इधर हुई ना रिवाइज? तो क्या हुआ फिर? अच्छा अगले हंस आसन की परिभाषा, हंस आसन की परिभाषा क्या है? प्रकाश भाई, देवेंद्र भाई, ये तो मुरली की शुरुआत ही यहां से है ना। सदा एक बाप दूसरा ना कोई, एक की लगन में मगन। एक बाप दूसरा ना कोई, ये जो स्थिति है ये हंस आसन की स्थिति है। तो इतना सारा जो हमने विस्तार अभी अभी जो चर्चा की चारित्रिक पतन की, ये सारा जो चारित्रिक पतन हुआ है भारत का, और एक पतन बताना भूल गए, फैशन, फैशन से, फैशन में। तो ये सारे जो पतन के जितने लक्ष्य, जितने चिन्ह भारत में या विश्व भर में है, इलाज क्या है? क्या बनो? होली हंस बनो। यदि हर एक होली हंस बन जाए तो शायद ये पतन रुक जाए। यहां पर बाबा ने स्मृति दिलाई है कि तुम होली हंस हो। और इस होली हंस की फिर 14 निशानियां। होली स्वान, ये जो होली हंस है इसकी कितनी निशानियां? 14 निशानियां है। हर एक को ऐसा होली हंस बनना है, तब भारत में ये जो महंगाई बढ़ गई है ये कम होगी, ये जो पतन हुआ है ये कम होगा, ये जो गरीबी आई है वो गरीबी मिटकर, वो विपन्नता मिटकर संपन्नता फिर आएगी। स्मृति दिलाई है। और एक राजकुमार था, बहुत छोटा सा था, 5 साल का। ये शायद कहानी कलकत्ता की है, उस समय कलकत्ता कहा जाता था। बहुत समय समय पहले राजा महाराजाओं का जब समय था, वहां की जो रानी थी, एक बार उसने एक बहुत बड़ा उत्सव का प्रबंध किया था, आयोजन किया था। तो उस उत्सव में एक नाटक को रखा था। उस नाटक में सभी पात्र मिल गए थे, पर एक छोटी सी कन्या का पात्र करने वाला कोई कन्या छोटी सी नहीं मिल रही थी। 5 साल की एक कन्या की आवश्यकता थी, तो बहुत ढूंढा पर नहीं मिली। तो फिर वो रानी सोचती है, क्यों ना मेरा ये जो छोटा सा बेटा है 5 साल का, उसी को राजकुमारी बना दिया जाए और उसी को रख दिया जाए ड्रेस पहनाकर, किसको क्या पता चलेगा, क्योंकि वो मिल तो नहीं रही है राजकुमारी, 5 साल की लड़की चाहिए थी, नहीं मिल रही थी। तो अपने छोटे से राजकुमार को ही लड़की का ड्रेस पहना देती है राजकुमारी का, और उसको उस नाटक में रख देती है। तो वो इतना अच्छे से नाटक करता है या करती है कि सबको बहुत पसंद आता है वो नाटक। तो बाद में फिर रानी क्या करती है कि वो सोचती है कि इसी ड्रेस में मुझे मेरा जो राजकुमार बेटा है उसकी तस्वीर बनानी है। तो नाटक पूरा होने के बाद यादगार, तो वो क्या करती है कि बहुत दूर से बहुत प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाती है और अपने उस बेटे की या जो अभी बेटी है उसकी राजकुमारी की चित्र तस्वीर निकालने को उसको कहती है। और वो भी बहुत सुंदर तस्वीर निकालता है वो चित्रकार। और नीचे फिर रानी कहती है कि नीचे तारीख भी लिख दो ताकि यादगार रहे, ठीक है। फिर ये जो राजकुमार होता है ये बड़ा होता है, 5 साल का था, अभी बड़ा हो गया, युवा हो जाता है, 20-25 साल का हो जाता है। और एक दिन ऐसे ही घूमते रहता है राजमहल में और फिर उन पुराने चित्रों को देखते रहता है, तो एकदम उसकी नजर उस छोटे चित्र पर पड़ती है, वो राजकुमारी का चित्र पर। और वो देखता है तो उसको बहुत अच्छी लगती है वो राजकुमारी। फिर देखता है डेट, और डेट देखने के बाद लगता है कि ये तो अब मेरी ही उम्र की होगी। डेट देखने के बाद उसको पता चलता है कि हम दोनों तो लगभग सेम ही है। और फिर उसको धीरे धीरे उसी के बारे में सोचते रहता है, फिर उसी के बारे में उसको धीरे धीरे प्यार हो जाता है उससे। किससे प्यार हो जाता है? राजकुमारी से। और फिर वो खोजना चालू करता है, रोज जाता है, वो सोचता है कि ये चित्र तो राजमहल में मिला, इसका अर्थ ये जो है अभी मेरे इतनी हो गई होगी और यहीं इर्द गिर्द कहीं होगी। तो रोज सुबह निकलता है, शाम तक वापस लौटता है ढूंढते हुए कि वो कहाँ है। और फिर धीरे धीरे उसका मन उदास सा हो जाता है क्योंकि वो नहीं मिलती। धीरे धीरे उसकी अवस्था, वो राजपाट में इंटरेस्ट कम हो जाता है क्योंकि प्यार का ऐसा उसको तीर लग जाता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है उसे, बस उसी से प्यार। वो जब तक नहीं मिल जाती तब तक कुछ नहीं, सब फीका फीका। तो भोजन, राजपाट, घूमना फिरना, सब में इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो एक दिन मंत्री को दिखाई देता है कुछ तो है बात। तो मंत्री आते हैं, कहते हैं क्या हुआ? वो कहते कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे बताओ बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ, तब उसको थोड़ा सा आता है कि इससे मदद ली जा सकती है ढूंढने में। तो बताता है कि मुझे एक स्त्री से प्यार हो गया है। तो वो कहता है उसका नाम? नाम मुझे पता नहीं। वो कहते है किस राज्य की राजकुमारी है? वो मुझे पता नहीं। क्या तुमने उसको देखा है? वो कहता है नहीं। फिर? वो कहता है चित्र देखा है। तो कहाँ है चित्र? चलो। तो चित्र दिखाने ले जाता है। तो कहता है ये तो कन्या है। वो कहता है ठीक से देखो। तो मंत्री डेट देखता है, बोलता है हाँ बात तो सही है आपकी, आपकी ही उम्र की होगी। परंतु एकदम से उसको थोड़ी सी याददाश्त आ जाती है क्योंकि उस जश्न में, उस उत्सव में मंत्री भी तो था। तो वो उसको कहता है अरे ये तो तुम ही हो, ये कोई दूसरा नहीं, जिसके प्यार में तुम पड़े हो, जिसकी जिसको तुम याद कर रहे हो, वो तुम ही हो, तत्वमसी धाव आर्ट दैट। और वो सुनते ही उस राजकुमार का सारा मोह, सारा इन्फैचुएशन, सारा इश्क मोहब्बत सब कुछ एक धक से खत्म होता है। जैसे ही स्मरण आता है, जैसे ही स्मृति आती है, जैसे ही उसे पता चलता है ये मैं ही हूं, उपनिषद का ऋषि चट्टान से चिल्लाता है तत्वमसि, तुम वो हो, तुम ये नहीं, तुम ये देह नहीं, ये संसार के तुम व्यक्तित्व नहीं, तुम वह हो जो दिव्य है, अमृतस्य पुत्रः तुम हो। ये कहानी आध्यात्मिक कहानी है। तो बाबा ने बताया है, तुम बगुले नहीं, तुम साधारण पक्षी नहीं, तुम साधारण व्यक्ति नहीं, तुम कौन हो? हंस हो, होली हंस हो, परम हंस हो। हंस अर्थात जिसने सिद्धि को प्राप्त कर ली, सन्यासियों की वह उपाधि है, और परम हंस वो कि जिसने समाधि को प्राप्त कर लिया है। हंस, परम हंस और अवधूत, ये कैटेगरीज है योगियों की। तो होली हंस अर्थात बाबा ने याद दिलाया है, तुम कौन हो? होली हंस हो। और जब तक होली हंस नहीं बनते, तब तक एक एक आत्मा अगर होली हंस बन जाए, तो ये जो पतन हुआ है, ये जो महंगाई बढ़ गई है, और ये जो गरीबी आ गई है चरित्र की, ये मिट जाएगी। ये जो भारत कंगाल हो गया है, ये जो भारत बैंकक्रप्ट हो गया है, ये जो भारत क्या बन गया है, देवाला निकल गया है भारत का, ऐसी जो गरीबी आ गई है भारत में, ये जो स्पिरिचुअल पॉवर्टी है, ये जो कैरेक्टर इन्फ्लेशन हुआ है, ये जो कैरेक्टर कॉस्टलीनेस, महंगाई जो बढ़ गई है, वो दूर होगी। तो सबसे पहली निशानी होली हंस की। चिमन भाई जी, श्याम भाई, होली हंस मुरली में, मुरली शुरुआत करो। सबसे पहली निशानी है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणकारी। हर एक आत्मा यदि योगी बन जाए तो चरित्र पतन होगा, चरित्र का उत्थान होगा। द राइज एंड फॉल ऑफ भारत, ये जो द फॉल ऑफ पॉम्पे फॉल हुआ है भारत का, तो सबसे पहली निशानी हर एक आत्मा को क्या बनना पड़ेगा? ज्ञानी। हर एक आत्मा को क्या बनना पड़ेगा? योगी। हर एक आत्मा को क्या बनना पड़ेगा? विश्व कल्याणकारी। यदि हर एक ये समझे कि मुझे योगी बनना है, मुझे ज्ञानी बनना है, ज्ञानी तू, ज्ञानी अर्थात सूचनाएं नहीं, ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार, ज्ञानी तू आत्मा अर्थात चरित्रवान, योगी तू आत्मा अर्थात चरित्रवान, ये सबसे पहली निशानी है होली हंस की। एक तो हंस आसन बताया बाबा, होली हंस की सभा में आए हैं, हंस आसन एक बताया, और फिर होली हंस की सारी निशानियां। तो क्या बनना है? सबसे पहले स्वयं को ज्ञानी तू आत्मा बनाना है, योगी तू आत्मा बनाना है। अभी अज्ञानी तू आत्मा है और भोगी तू आत्मा है, संसार की आत्मा है, भोग विलास, ये जो भोग प्रवृत्ति है, भोगवादिता है, ये भी चरित्रिक पतन का एक कारण है। भोगवादी संप्रदाय, भोगवादी संस्कृति बन गई है, चरवाक संस्कृति इसको कहा जाता है, इपिक्यूरियन फिलॉसफी। विदेश में कहते हैं खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, इपिक्यूरियन फिलॉसफी। भारत में एक सिद्धांत है जो कहता है खाओ पियो और मौज, चरवाक ने ये सिद्धांत रखे और बहुत तेजी से सबने इसको स्वीकार कर लिए थे। क्या करना क्या है जीवन में? वैसे भी मरने वाले हैं, जीवन तो मरण तो आने वाला ही है, जब तक है अच्छे से खुशी खुशी से जियो, मौज करो, ऐश करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये सिद्धांत को चरवाक सिद्धांत कहा जाता है, या एपिक्यूरियन फिलॉसफी। डूब जाओ इसमें, विकारों में, जितना भोग सके भोग लो, बाद में टाइम नहीं है, डूबो और भोगो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, वैसे ही रह जाएंगे सारे सन्यासी कोरे तप करते हुए, बस प्रभु का गीत गाते गाते पता नहीं कौन सा प्रभु आएगा नहीं आएगा, उसके पहले तो जीवन का मजा ले लो। ये जो फिलॉसफी है इसको कहा जाता है भोगवादी फिलॉसफी। तो सारा संसार भोगी बन गया है, सारा संसार अज्ञान की गर्त में डूबा हुआ है, और सारा संसार विनाशकारी है। चारित्रिक पतन में एक और चीज आती है विनाश वाली, ये जो क्या कहते हैं इसको, आतंकवाद, ये क्या है? ये भी तो चारित्रिक पतन ही है, नृहंस हत्या करना किसी की, निशंस हत्या, ये पतन ही तो है। तो पहला, दूसरा, दूसरी निशानी, दूसरी निशानी दिलाराम के दिल से याद, एक की याद, एक दिलाराम की याद, एक की याद के लिए उसके भी पहले चाहिए एक का परिचय। जब सारे संसार को परिचय ही नहीं है तो याद कहां से करेगा। अभी जिस जिस को याद कर रहे हैं वो कोई और है, उनसे कभी भी चरित्रवान नहीं बनेंगे। हाँ, चरित्र की थोड़ी बातें आ सकती है पर सब नहीं। कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग चाहिए। ये जो एजुकेशन अभी जो दिया जा रहा है वो कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं है। उसमें हाँ सोर्स ऑफ इनकम है वो, परंतु कैरेक्टर बिल्डिंग है, चरित्र निर्माण वाला शिक्षा वाली शिक्षण। अभी जो शिक्षण हमको दिया जा रहा है वो मैक्युले फिलोसॉफी है। भारत में जो मैक्युले आया था उसने डाले हुए सिद्धांत है ये एजुकेशन के। पहले गुरुकुल था, सारे गुरुकुल को नष्ट कर दिया गया और वो मैक्युले ने अपने सिद्धांत रखा और वो मैक्युले सिस्टम ऑफ एजुकेशन चल रहा है अभी, जो भारत ने बाद में स्वीकार कर लिया। तो क्या करना पड़ेगा, एक की याद के लिए सबसे पहले तो हरेक को एक का परिचय होना चाहिए। ये दूसरी निशानी है किसकी, होली हंसों की। तीसरी निशानी वर्तमान और भविष्य बनाने की लगन में हरेक को लगना पड़ेगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर बिल्डिंग। वर्तमान और भविष्य, वर्तमान में जो चल रहा है और भविष्य के लिए प्लानिंग, चरित्र की प्लानिंग, उसकी एजुकेशन। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कैरेक्टर एजुकेशन, क्या किया जाए श्रद्धाबिन कैरेक्टर एजुकेशन के लिए, हमारी जो वर्तमान शिक्षा है उसमें क्या किया जाए पवित्रबिन। कैरेक्टर एजुकेशन होना चाहिए, वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन का सब्जेक्ट हर क्लास में कंपलसरी होना चाहिए, या फिर कंपलसरी यदि नहीं है तो जो लोग टीचर्स है वो अपनी क्लासेस में बीच बीच में वैल्यू एजुकेशन के बारे में सिखाए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्टर्स, स्लाइड्स या प्लेज, ड्रामास, ये सारा रोल मॉडल, रोल प्लेज, ये सब बीच में किया जाए। एक तो वैल्यू एजुकेशन, दूसरा हाँ एक क्लास कंपलसरी होना चाहिए हर स्कूल में। और कब चालू करना चाहिए, कौन सी क्लास से, एक छोटा सा 8 साल का बच्चा अपने टीचर से पूछता है मास्टर जी, मास्टर जी, क्या पूछता होगा, क्या पूछता होगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछता है। वो सुना है उसने वो सारा शब्द, तो वो पूछता है कि ये जो नैतिक शिक्षा है ये किस उम्र से चालू करनी चाहिए। छोटा सा प्रश्न पूछता है, मास्टर जी पूछता है, पूछते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है, वो कहता है 8 साल, वो कहता है तुमने 8 साल पहले ही वेस्ट कर दिए, मतलब एकदम बचपन से चालू हो जानी चाहिए। जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तब से नैतिक शिक्षा चालू हो जानी चाहिए। कंप्लीट मॉरलिटी इज कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी, धीरे धीरे हो जाएगी। तो एक तो मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, उसके बाद नेक्स्ट सोशल, सोशल इथिक्स, प्रोफेशनल, नहीं स्कूल में क्या करना चाहिए, हम स्कूल के प्रश्न पर किस लिए, हाँ तो पेरेंटल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन और राइट है उनकी मीटिंग्स और उनको इनको एजुकेशन, क्योंकि बच्चे सीखते कहां से हैं, माँ बाप से सीखते हैं। मम्मी 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 पिंटू से कहती है कि पिंटू तुम फिर लड़ने लग गए, तो वो क्या कहता है, हम लड़ नहीं रहे, हम मम्मी डैडी का खेल खेल रहे हैं। वो दूसरा है हम क्या कर रहे हैं, मम्मी डैडी का खेल कर रहे हैं। तो दूसरा है पेरेंटल एजुकेशन, तीसरा जल्दी बताओ, शिक्षक ट्रेनिंग, उनको ट्रेनी तैयार करने हैं, ट्रेनिंग द ट्रेनर्स, ऐसे कुछ लोगों को तैयार करना है जो दूसरों को ट्रेन करे वॉलेंटरी। और ड्रामास करने चाहिए, स्किट करने चाहिए और मॉरल एक्टिविटीज, मॉरल एक्टिविटीज इंक्लूड करनी चाहिए। खाली शिक्षा देने से कुछ नहीं होता है, पढ़ाने से एक्टिविटीज करनी चाहिए, उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए सबको, इंस्पिरेशनल स्टोरीज उनको सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए। और महेंद्र भाई, स्कूल में नैतिक शिक्षा किस तरह से दी जाए, या चारित्रिक पतन जो हुआ है उसको कैसे सुधारा जाए स्कूल के तल पर, स्तर पर। और बताओ, टच द लाइट का पूरा एक सिलेबस बना हुआ है। और फेस्टिवल्स पर क्या, उनके अंदर कलाएं डेवलप करनी है, उनको प्रोत्साहित करना, उनके अंदर निर्भयता जो वैल्यूज है उसमें एक कला है भाषण कला, व्यासा कराना चाहिए भाषण कला। तो वो भाषण कला का सीरीज अभी हम यहां चालू करने वाले हैं, द आर्ट ऑफ स्पीकिंग। आर्ट ऑफ स्पीकिंग में हरेक अभी आगे जो आएगा हरेक को काम दिया जाएगा, भाषण कैसे करे तैयार करो। टॉपिक नहीं, यही टॉपिक है, यही टॉपिक है, हाँ यही टॉपिक है। उसमें हरेक को बोलना है, ये सीरीज होगी आर्ट ऑफ स्पीकिंग सीरीज, ऐसी पूरी लगभग 21 एपिसोड्स चलेंगे, वो हरेक इसमें इन्वॉल्व होगा, हरेक को काम दिया जाएगा। शुरुआत हम करेंगे अगले संडे से सुशील भाई, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, भाषण देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे अच्छी चीज है। जैसे एक चीज जो हमेशा कही जाती है कि बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए, वो कि स्पीकर आकर बोले कि मेरी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, ये जो है दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पीच। मेरी मैं बीमार था या कोई भी शुरुआत में ही बहाना बनाना, ये आर्ट ऑफ एक्सक्यूज बनाना या आर्ट ऑफ स्पीकिंग के विरुद्ध में आता है, कुछ प्रिंसिपल्स है उसके, भाषण कला। तो कहां थे हम, वर्तमान और भविष्य को बनाना है। तीसरी और चौथी पॉइंट रह गई है शिक्षा की, इंग्लिश बाद में, स्त्री शिक्षा की। और दो बातें और बताओ, स्कूल में की जाए, पेरेंट्स का हो गया, स्केल हो गया, किताबें, बुक्स, न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग, उनको वही वही मेथड्स नहीं, न्यू मेथड्स ऑफ लर्निंग। जैसे ये जितनी मेथड्स है ना, ये सारी स्कूल की ही मेथड्स है, यही सारा स्कूल में अप्लाई करें, यही सारी स्कूल की मेथड है, जिसमें एमसीक्यूज, जिसमें सब कुछ अलग अलग हो। क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी लानी है। और स्टोरीज, वो बोल दिया। और खेल, प्लेज, उनका प्लेज में इंटरेस्ट, खेलकूद में। और हाँ, आपस में दोनों का रिलेशन जो है ना, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, स्टूडेंट्स और टीचर्स का रिलेशंस, माँ बाप बाद में, पहले इन दोनों का रिलेशंस, इस पर काम करना है। तो ये सारा शिक्षा का तल। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है, वर्तमान और भविष्य को बनाने की लगन में लगना है। फिर है चौथा है वर्षे के अधिकारी, सबको वर्षे के अधिकारी बनाना है। बाबा ने कहा ये जो परिवार है कैसा परिवार है, एक लक्ष्य है, एक लगन है, एक क्या है इस परिवार में, एक मत है, एक लगन है, एक लक्ष्य है, ऐसे परिवार में सभी वर्षे के अधिकारी, वर्षे का अधिकारी बनना अर्थात होली हंस। तो हरेक को वर्षे का अधिकारी बनाना, मतलब हरेक तक संदेश अभी तक पहुंचा नहीं है, हरेक तक जब संदेश पहुंच जाएगा तब अपने आप, ये जो व्यसन की बात हमने की नहीं चारित्रिक पतन में, व्यसन इसमें डी एडिक्शन होना चाहिए। आजकल बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब उनमें आदतें हैं, सब आदतें हैं उसमें। हमारे पास माउंट के जितनी स्कूल से उनके टीचर्स आते हैं, उनको डर लगता है स्टूडेंट से, क्योंकि कुछ भी करे तो सीधा गालियां देते हैं, स्ट्राइक कर देते, हड़ताल कर देते, कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ बोल ही नहीं सकते। यहाँ पे जितने टीचर्स है, किसी हरेक को हाइपरटेंशन तो है ही, क्यों, कारण है बच्चे। यहाँ के जितने स्कूल में जो चौकीदार पहरेदार है, वो भी वार्डन है, वो सब बीपी वाले हैं, क्यों, टेंशन बच्चों का, टीचर्स सारी नंस सबको कुछ ना कुछ है, क्योंकि बच्चे शांति से जीने नहीं देते। स्ट्रेस बहुत है उनको सबको। तो एडिक्शन भी एक है चारित्रिक पतन। एडिक्शन में स्थूल से लेके से सूक्ष्म तक, वो एडिक्शन फिर फैशन का एडिक्शन, शॉपिंग का एडिक्शन, इंटरनेट का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन, ये सारा उसमें आ गया, इंक्लूडेड हो गया सब कुछ। और फिर बाकी तो है ही, गुटखा, मिराज, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, ये सारा एडिक्शन, ये सब चारित्रिक पतन है जो स्कूल में हो रहा है। तो क्या करना है, वर्षे का अधिकारी हरेक को बनाना। और हमने देखा है कि जैसे ही व्यक्ति ज्ञान में आ जाता है ये सारा अपने आप छूट जाता है, और इसके पहले कितना कोशिश करता है फिर भी नहीं छूटता है। हाँ खर्रा मिट्टल भाई सब अपने आप कैसे छूट जाता है पता ही नहीं चलता है। वो भी सोचते अभी बाजू वाला अगर कोई स्मोकिंग करे तो सहन नहीं कर पाते, बंद करो कहते। और पहले खुद चेन स्मोकर पता है ना, एक अभी पूरी हुई नहीं तो दूसरी ना, एक अभी पूरी हुई नहीं तो दूसरी, ऐसी चेन स्मोकिंग। तो ये ज्ञान में ऐसा अजीब सा पावर है कि जैसे ही व्यक्ति आता है इसमें अपने आप छूट जाता है सब। और उधर कितनी बार छोड़ने की कोशिश करता है, ये डी एडिक्शन, ये रिहैब सेंटर, पुनर्वसन केंद्र, 15 दिन यहां रह गया, 15 दिन ठीक था फिर आ गया, फिर चालू कर दिया। कितने माँ बाप है पूछो उनको क्या हाल है सबका। तो वर्षे का अधिकारी चौथा, पांचवा कुल का दीपक, कुल दीपक। हरेक आत्मा कुल का दीपक बने, कुल को कलंक करने वाला ना बने। उसे पहले तो इस कुल का ज्ञान देना है, उसे तो पहले बताना है ये तुम्हारा ईश्वरीय कुल है, ये श्रेष्ठ कुल है, ये ब्राह्मण कुल है जिसमें तुम आए हो। ये जैसे ही उसको पता चलेगा वो अपने आप कुल का दीपक बनने का प्रयत्न करेगा। अभी उसको पता ही नहीं है ये श्रेष्ठ परिवार के विषय में, इस श्रेष्ठ संगठन के विषय में, तो कहां से दीपक बनेगा। अभी तो क्या बन के बैठा है, संसार का कौन सा दीपक बन के बैठा है, बुझा हुआ दीपक। द बर्निंग माइंड है अभी संसार में, आग लगाने वाला है वो। तो कुमार से मुलाकात है, अभी मुरली चालू है। हाँ पर वो कुमारों से मुलाकात में है, कुमारों से मुलाकात है, वो बाद में है। छठवा, छठवा कुलदीपक के बाद छठवा, छठवा विश्व परिवर्तक के निमित्त आत्माए। होली हंस की निशानी है विश्व परिवर्तक के निमित्त आत्माएं बनना है, ये होली हंस की निशानी है, मुझे करना है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। सातवा चमकता हुआ सितारा, क्या करे जो सारे विश्व को रोशनी दे। कितने श्रेष्ठ सम्मान है ये, कहीं सितारा कह रहे हैं बाबा, कहीं कुलदीपक कह रहे हैं, कहीं पर विश्व परिवर्तन की निमित्त आत्माएं कह रहे। आठवा लकीर अविनाशी भाग्य की बढ़ाने वाले। नौवा दृढ़ संकल्पधारी, एक मत एक राज्य, और एक राज्य एक धर्म लाने वाले दृढ़ संकल्पधारी। सारा एक चरित्र का पतन का एक कारण है संकल्पों में बल नहीं है, लोगों के पास पावर नहीं है डिसीजन। चाहते तो सब है कि ऐसा हो वैसा हो, पंचवार्षिक योजनाएं, कितनी योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग्स तो हजारों है, परंतु बल कहां है उनको इम्प्लीमेंट करने का। तो इसके लिए आठवां है दृढ़ संकल्पधारी। नौवां दसवां उमंग और उत्साह, कौन सा उमंग उत्साह, बहुत अच्छा उमंग उत्साह बताया। ऐसा उमंग उत्साह है क्या किसी को, संसार के कॉलेज के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स को पूछो कौन सा उमंग उत्साह है, तोड़फोड़ करने का उमंग उत्साह है। हमको याद है जब हम मेडिकल कॉलेज में थे, हमारे मेडिकल कॉलेज में हमारे सीनियर्स ने ऐसी तोड़फोड़ की थी कि वो मेडिकल कॉलेज के जो ऑफिस में जाके कांच वगैरह था सब तोड़ दिया था, और डीन था उसको काला काला लगा के आ गए थे। ये था चरित्र। एक बार कर्फ्यू लगा था मेडिकल कॉलेज में, ऐसा जबरदस्त कर्फ्यू कि एक दो मेडिकल स्टूडेंट्स को पकड़ के लेके गई थी पुलिस, इतना हंगामा हुआ था। ये सब था, कुछ भी इनटॉलरेंस है, इनटॉलरेंस, सहन नहीं कर सकते, थोड़ा सा भी हमारी बात नहीं मानी तो सीधा लड़ाई झगड़ा, ये केवल एक ही जगह नहीं है, सब जगह। उसमें रैगिंग एक होती है और एक ये चरित्र पतन है, रैगिंग तोड़फोड़ गुंडागर्दी, ये सब चरित्रिक पतन है। ये क्या हो रहा है रस, ईव टीजिंग छेड़खानी, तो ये सब चरित्रिक पतन है संसार में। तो कहाँ थे, उमंग उत्साह। कौन सा उमंग उत्साह होना चाहिए लोगों को, ये इसका उमंग उत्साह है। हाँ हमारे हमारे इसमें वो कहते थे उमंग उत्साह लोगों को, कॉलेज गोर्स जो है उनको उमंग उत्साह होता है मूवीज का, साथ में मूवीज जाने का, ये उमंग उत्साह बहुत है। कौन सी नई फ्लिक रिलीज हुई है, कौन सी मूवी रिलीज हुई है, साथ में जाएंगे। पार्टी का उमंग उत्साह बहुत है, फिल्मों का उमंग उत्साह बहुत है, गीतों का उमंग उत्साह बहुत है, डांस का उमंग उत्साह बहुत है, ये सब का उमंग उत्साह है। बाबा किस उमंग उत्साह की बात कर रहे हैं, शांत सुखमय, शांत सुखमय संसार बने, विश्व की एक एक आत्मा सुख शांति की अधिकारी बने, ऐसी जो भटकती हुई आत्मा है यहाँ की, भारत की, विश्व की, और ऐसी जो प्यासी आत्मा है उनको सुख शांति मिले, ये उमंग उत्साह हमको है कि हर एक सुख शांति का अधिकारी हो जाए। ये ऐसे शब्द तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होंगे कि पता है कि सुख शांति देनी है सबको। आशीष भाई कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये सब खबर है कुछ, बीके युद्ध को है, ब्राह्मण जो युवा है उनको तो है, परंतु जो संसार के लोग हैं उनके और एक उमंग उत्साह है करियर का, कैसे भी करके एडमिशन मिलनी ही चाहिए, लेना ही है, ये बनना ही है, बस उसी में एम्बिशंस, वर्ल्डली एम्बिशंस का उमंग उत्साह बहुत ज्यादा है, और उसमें पेरेंट्स इक्वली इन्वॉल्व है कि कैसे भी करके मिलानी है। फिर 11वां उमंग उत्साह पवित्रता, 11वां पवित्रता, पवित्र आत्मा। पवित्रता का क्या बोला सुशील भाई, क्या बोला पवित्रता की, पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की जब शक्ति होगी तब कहीं होली हंस बनेंगे और तब कहीं भारत का उत्थान होगा। यहां पवित्रता की शक्ति ही नहीं है किसी के पास, यहां तो पवित्रता और ब्रह्मचर्य और पवित्रता जैसे शब्द कॉलेज लाइफ में कहीं है ही नहीं कि है। सारा लाइफ जिस तरह के लोग वो गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स यही चालू है उधर, पूरा उसी में डूबे हुए है, ये उसके साथ घूम रहा है, वो उसके साथ घूम रहा है, बस इसी को ही सब कुछ समझते हो। अगर किसी का कोई नहीं है तो वो सबसे ज्यादा दुखी है कि उसके साथ घूमने वाला कोई नहीं है। तो बड़ा ही नशा रहता है उनको घुमाने में, और जिसके पास नहीं है वो सबसे ज्यादा दुखी कॉलेज में। बहन जी तो आप बोल ही नहीं सकते कॉलेज गर्ल्स को, बहन जी बोल दिया तो बस। तो 11वां है पवित्रता, 12वां मास्टर सर्वशक्तिवान, जिसके पास शक्तियां साथ है। यहां पर संसार में युवकों के पास शक्तियां है क्या, कौन सी शक्ति है, विनाश की शक्ति, तोड़फोड़ करने की शक्ति, रोड रेज करने की शक्ति, कुछ भी थोड़ा सा हो गया कि झगड़ा चालू, ये करने की पावर बहुत है। सबसे झगड़ा करेंगे, सबसे, पुलिस से लेके तो घर वालों से लेके तो कॉलेज स्टूडेंट से लेके टीचर से लेके, टीचर्स को परेशान करना ये एक दूसरा है। टीचर्स को परेशान करना और सरकारी जो संपत्ति है उसको, उसका नाश करना, वो कुछ भी हो सकता है, सिनेमा घर भी हो सकता है, उसका नाश। तो कुछ भी हो सकता है। तो पवित्रता और मास्टर सर्वशक्तिवान, यहां पर शक्तियों की कमी है। उसके बाद में 13वां त्रिकालदर्शी, विश्व परिवर्तक बन त्रिकालदर्शी बने हैं, और त्रिकालदर्शी बन के पता है कि हम ही परिवर्तक थे, हम ही हैं। ये त्रिकालदर्शी की स्थिति, त्रिकालदर्शी ये शब्द कॉलेज स्टूडेंट्स को बोलो तो क्या कहेंगे, त्रिकालदर्शी पर अपने विचार प्रकट कीजिए सुशील भाई, अगर किसी का इंटरव्यू लिया तो। त्रिकालदर्शी बोलेंगे हम ही त्रिकाल, पहले बोलेंगे त्रिकालदर्शी मतलब, तो बोलेंगे हम ही है। वो तो समझते हैं ना, हम ही गुरु है, सबके गुरु हम ही है, उस्ताद हम ही है, हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो त्रिकालदर्शी और चौदहवीं पॉइंट लास्ट, निश्चित विजयी, विजय का नशा है। तो होली अंश अर्थात निश्चित विजयी, वो संसार आया कि आया, कोई प्रश्न नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, आएगा नहीं आएगा, जो विश्व के मालिक है वो विश्व का राज्यभाग लेने वही लेंगे। बहुत अच्छा वाक्य है, विश्व के मालिक ही विश्व का राज्यभाग लिया पड़ा है, प्राप्त हुआ पड़ा है। तो ऐसी ये तो निश्चित विजयी, ऐसी ये टोटल कितनी निशानियां है होली अंश की, 14 निशानियां। फिर से चालू करते हैं पीछे से, 14वां निश्चित विजयी, 13वां त्रिकालदर्शी, 12वां मास्टर सर्व शक्तिमान, 11वां पवित्र, 10वां उमंग उत्साह, 9वां दृढ़ संकल्पधारी, 8वां अविनाशी भाग्य की लकीर, चमकता हुआ सितारा विश्व को रोशन करने वाला, 6वां कुल का दीपक, 5वां कुल का दीपक है, 6वां विश्व परिवर्तक के निमित्त, गड़बड़ नहीं कर सकते, 4वां वर्षे के अधिकारी क्योंकि सभी श्रेष्ठ परिवार में आ गए, 3रा वर्तमान और भविष्य बनाने की लगन। ठीक है, आप सबको एक होमवर्क दे रहे हैं, चरित्र निर्माण करने के लिए भारत में क्या क्या किया जाए। आपको एक लेटर लिखना है भारत सरकार को कि चरित्र निर्माण के लिए ब्रह्मा कुमारी इसकी ओर की ओर से हम ये सोचते हैं, 21 पॉइंट प्रोग्राम आपको भेज रहे हैं जिससे भारत के युवाओं का उत्थान होगा। ये सबको लिखना है, 21 पॉइंट प्रोग्राम फॉर कैरेक्टर अपलिफ्टमेंट, चरित्र निर्माण के लिए या चरित्र का उद्धार उत्थान के लिए, कैरेक्टर मेकिंग, 21 पॉइंट्स फॉर कैरेक्टर मेकिंग कि ये हम ब्रह्मा कुमारी की तरफ से लिख रहे हैं और हम ये आश्वासन दे रहे हैं कि हम ये करके दिखाएंगे और आप ये करो। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग प्रोग्राम बनाना है, लिखना है, आज सारे दिन भर इसके ऊपर चिंतन करना है। अगला, दूसरा, दिलाराम की याद दिल में समाई हुई हो, और एक नंबर, ज्ञानी तु आत्मा योगी तु आत्मा। तो ये हुई पूरी मुरली, उसके बाद माताओं से मुलाकात है, हमने एक दूसरी क्लास में वो पूरा क्लास कवर किया है, वंदे मातरम करके एक क्लास है भट्टी में, वो यहाँ नहीं लेंगे। एक कुमारों से मुलाकात, कुमारों को क्या क्या कहा, बिजी मैन बनना है, बिजनेसमैन नहीं बनना है, दृढ़ संकल्पधारी बनना है, तुमको क्या क्या होना चाहिए महिंदर भाई, कर्तव्य के सितारे हो और महादानी हो, यदि कोई दान मिलने वाला मिलने जाए तो क्या करते हैं संसार में, ढिंडोरा पीटते हैं, ढूंढते हैं कोई गरीब मिल जाए और उसको पकड़ पकड़ के दान देते हैं। चार्ट रखना है, चार्ट शब्द नहीं है परंतु चार्ट जैसा ही बनाना है। उसके बाद में और क्या, लास्ट कुमारों से क्या क्या कहा, भाग्य के दृढ़ संकल्पधारी बनना है, भाग्य की स्मृति होनी चाहिए, बिजी मैन बनना है, उसके बाद में महादानी बनना है, उसके बाद में मेरा एक ही बात बुद्धि में हो, मेरा बाबा और मेरी सेवा, एक ही बात पर अटेंशन हो। वो कौन सी बात है जिस पर अटेंशन हो, बिजी मैन बिजनेसमैन नहीं, इस बात पर अटेंशन हो। तो ये हो गया कुमारों से, कुमारियों को मुख्य बात कौन सी कही कि याद रखो स्वतंत्र रहना है, पांडव या कुमार, शिव शक्ति, दुर्गा और इधर इनकी निशानी गणेश और हनुमान, और भाषण देने की कला सीखनी है। तो अभी हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं, आर्ट ऑफ स्पीकिंग, जिसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी भाषण कला में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, वो चालू करेंगे। और कोई पॉइंट, तो इन शॉर्ट ये मुरली थी जिसकी ये सारी पॉइंट्स थी। ओम शांति।